पत्रियों से संदेश रैंडोल्फ डन द्वारा। ईसा मसीह के प्रायश्चित बलिदान से पहले रोमन साम्राज्य में दो प्रमुख धर्म थे। यहूदियों ने आज्ञाओं का पालन करने और किए जाने वाले कार्यों के साथ जीवित ईश्वर की पूजा की। अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और कार्य करने से भविष्य में क्षमा और मोक्ष अर्जित किया गया। बुतपरस्त देवता या तो पौराणिक कथाएं थे या मानव निर्मित देवता, वे बोल नहीं सकते थे, इसलिए कोई आदेश नहीं थे। उनकी पूजा का कार्य कामुक इच्छाओं को संतुष्ट करने पर केंद्रित था। मंदिरों की स्थापना नरनारी वेश्याओं से की गई। सम्राट डोमिनेशियन ने खुद को पृथ्वी का भगवान कहा और इस बात पर जोर दिया कि उसकी प्रशंसा की जाए, और इनकार के परिणामस्वरूप उत्पीड़न हुआ। प्रेरितों के काम की पुस्तक पिता के साथ रहने के लिए मसीह के स्वर्ग में वापस आरोहण से शुरू होती है। 50 दिन बाद पिंतेकुस्त पर मसीह ने केवल यहूदियों पर ही नहीं बल्कि सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेली, क्योंकि यह पिंतेकुस्त का दिन था। यरूशलेम में पूरे रोमन साम्राज्य से यहूदी मौजूद थे। यीशु के निर्देश के अनुसार चेले यरूशलेम में एक साथ थे। अचानक स्वर्ग से तेज आंधी का सा शब्द आया और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जोरदार आवाज सुनकर यहूदी उस ओर दौड़े जहां शिष्य थे। पतरस ने उन ग्यारहों के साथ खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदिया के लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों, यह जान लो और मेरी बातें सुनो। भविष्यवक्ता जोएल ने भविष्यवाणी की थी और अंत के दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह बच जाएगा। हे इसराइल के लोगों, ये वचन सुनो, यीशु नासरत वह पुरुष जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रमाणित किया, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा किए, जैसा कि तुम आप ही जानते हो कि यह यीशु एक निश्चित योजना के अनुसार पकड़वाया गया है, और परमेश्वर के विषय में पहले से जानने के कारण तुम क्रूस पर चढ़ाए गए और अधर्मियों के हाथ से मारे गए। भगवान ने उसे मौत की पीड़ा से मुक्त करके उठाया, क्योंकि उसके लिए उसे पकड़ना संभव नहीं था। दाऊद ने पहले यह देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा कि वह अधोलोक में नहीं छोड़ा गया और न उसके शरीर में सड़न देखी गई। इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और हम सब इसके गवाह हैं। इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ से महान होकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पाकर उसने यह उंडेला है जिसे तुम आप देख और सुन रहे हो। इसलिए इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों ठहराया। जब उन्होंने यह सुना तो उनके हृदय टूट गए और उन्होंने पतरस और बाकी प्रेरितों से कहा, हे भाइयों, हम क्या करें? यीशु मसीह आपके पापों की क्षमा के लिए और आपको पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त होगा। संकलक की टिप्पणी, ग्रीक शब्द काई का अनुवाद किया गया है और यह पश्चाताप और बपतिस्मा को एक साथ जोड़ने वाला शब्द है। एक अन्य ग्रीक शब्द डे का भी अनुवाद और किया गया है, जो दो शब्दों को जोड़ने के बजाय अलग करता है। टिप्पणी समाप्त करें। परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या बहुत बढ़ गई और बहुत से याजक विश्वास के प्रति आज्ञाकारी हो गए, और स्तिफनुस अनुग्रह और शक्ति से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच बड़े आश्चर्य कर्म और चिन्ह दिखाता था। कुछ लोगों ने स्तिफन से विवाद किया, परंतु वे उस बुद्धि और आत्मा का सामना न कर सके जिससे वह बोल रहा था, इसलिए वे झूठे गवाहों को ले आए जिन्होंने कहा, यह आदमी इस पवित्र स्थान और कानून के खिलाफ बातें कहना कभी नहीं छोड़ता। स्टीफन ने यहूदियों के एकत्रित नेताओं को ईसा मसीह के बारे में यहूदियों का इतिहास और भविष्यवाणियां सुनाईं। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बाप दादों ने किस भविष्यद्वक्ता पर अत्याचार नहीं किया? और उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्होंने पहले से उस धर्मी के आने का समाचार सुनाया था जिसे तूने अब पकड़वाकर घात किया है, तूने स्वर्गदूतों के द्वारा दी हुई व्यवस्था को ग्रहण किया और उसका पालन नहीं किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो क्रोधित हुए और उस पर दांत पीसने लगे, और शाऊल, जिसे बाद में पौलुस के नाम से जाना गया, ने उसकी फांसी को मंजूरी दे दी। संकलक की टिप्पणी, अपनी शक्ति और पद खोने के डर से धार्मिक नेता तुरंत ईसाइयों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। टिप्पणी समाप्त करें। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और वे सब यहूदिया और सामरिया के प्रदेशों में तितर-बितर हो गए। फिलिप सामरिया शहर में गया और उन्हें मसीह का प्रचार किया। परंतु शाऊल अब भी प्रभु के चेलों को धमकिया और हत्या की धमकी दे रहा है। वह चलते चलते दमिश्क के पास पहुंचा और अचानक स्वर्ग से एक ज्योति उसके चारों ओर चमकी और भूमि पर गिरते हुए उसने यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु, आप कौन हैं? और उसने कहा, मैं यीशु हूं जिस पर तुम अत्याचार कर रहे हो। परंतु उठो और नगर में प्रवेश करो और तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। यहोवा ने हनन्याह से कहा, जाओ, क्योंकि वह अन्य जातियों, राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम ले जाने के लिए मेरा चुना हुआ साधन है, क्योंकि मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। अत हनन्याह चला गया और घर में प्रवेश किया और उस पर हाथ रखते हुए उसने कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जिसने उस मार्ग में जिससे तू आया था तुझे दर्शन दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर देखने लगे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके जैसी कोई वस्तु गिरी और उसकी दृष्टि फिर से हो गई। फिर वह उठा और बपतिस्मा लिया और कुछ खाने के बाद फिर से अपनी शक्ति प्राप्त कर ली। कुछ दिनों तक वह दमिश्क में शिष्यों के साथ रहे और तुरंत उसने आराधनालयों में यीशु का प्रचार करके कहा, वह परमेश्वर का पुत्र है। बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को गया और जब वह मिल गया तो उसे अंताकिया में ले आया। पूरे एक वर्ष तक वे चर्च से मिले और बहुत से लोगों को शिक्षा दी। जब वे यहोवा की आराधना और उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए जिसके लिए मैंने बुलाया है मेरे लिए अलग कर दो। पॉल ने मसीह का प्रचार करते हुए एशिया माइनर के सभी शहरों में यात्रा करना शुरू किया। उन्होंने इनमें से कई शहरों में ईसाइयों को पत्र लिखकर उन्हें वफादार बने रहने और धर्मपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। पॉल ने रोमियों को लिखा कि यीशु को उसके पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र घोषित किया गया था। सुसमाचार मसीह का जीवन है, पाप की क्षमा के लिए प्रायश्चित बलिदान, दफनाना, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण। यह सुसमाचार मुक्ति के लिए ईश्वर की शक्ति है। धर्मी लोग विश्वास से जीते हैं जबकि अधर्मी का जीवन परमेश्वर का क्रोध लाता है। ईश्वर की शाश्वत शक्ति को उसकी रचना की जटिलता से समझा जा सकता है। अधर्मी लोग अपनी निरर्थक सोच में अमर ईश्वर को मनुष्य द्वारा बनाई गई छवियों और मिथकों से प्रतिस्थापित कर देते हैं। अधर्मी दुष्ट, दुर्भावनापूर्ण, लोभी और ईर्ष्यालु होते हैं और उन लोगों का अनुमोदन करते हैं जो अधर्मी कार्य करते हैं। एक ईसाई के जीवन में ईश्वर प्रतिबिंबित होना चाहिए, अन्यथा उसका संदेश व्यर्थ है। ईश्वर की धार्मिकता मसीह में विश्वास के आधार पर ईसाइयों के कृत्यों से प्रकट होती है और उनकी कृपा से उचित होती है। ईश्वर का प्रेम अब ईसाइयों में पवित्र आत्मा के माध्यम से है जो उसने उन लोगों को दिया जो मसीह के रक्त द्वारा धर्मी ठहराए गए, छुटकारा पाए और मेलमिलाप किए हुए थे। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में आ गई इसलिए कि सब ने पाप किया, और यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू बाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जब तू उसका फल खाएगा तब निश्चय मर जाएगा। लेकिन शाश्वत जीवन मसीह के विश्वास के प्रायश्चित बलिदान और मनुष्य द्वारा उसकी आज्ञाओं के पालन के माध्यम से उपलब्ध हुआ। या क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने, जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया। इसलिए हम मृत्यु का बपतिस्मा लेकर उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन जी सकें। एक पूर्व ईसाई का पापपूर्ण जीवन मर गया और उसे बपतिस्मा के माध्यम से मसीह के रक्त में दफनाया गया। उनकी पूर्व धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं मसीह में उनके नए आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा नहीं होंगी। पापपूर्ण कृत्यों के माध्यम से सैटिन के साथ संबंध में प्रवेश करके इस रिश्ते को तोड़ा जा सकता है, जो आध्यात्मिक मृत्यु लाता है, जब तक कि किसी के कार्यों और विचारों में बदलाव, क्षमा मांगने और मसीह के पास लौटने से क्षमा न हो जाए। यह बिल्कुल एक विवाह अनुबंध की तरह है, जो विवाह अनुबंध के प्रति बेवफाई से भंग हो जाता है। ईश्वर या जीवन साथी के साथ अनुबंध के प्रति विश्वासघात व्यभिचार है। मूसा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा या कानून का अस्तित्व तब समाप्त हो गया जब ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इसके स्थान पर परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से उन सभी के साथ एक नई और बेहतर वाचा स्थापित की, जिन्होंने मसीह में अपना विश्वास और आज्ञाकारिता रखी। यह आत्मा ईश्वर ने उन लोगों में डाली जिन्हें उसने मसीह के रक्त में बपतिस्मा से उठाया था। वह ईश्वर के साथ संवाद करते समय लगातार आंतरिक मनुष्य के दिल और दिमाग की खोज करता है। परमेश्वर की इच्छा उन लोगों द्वारा पूरी की जाएगी जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी छवि के अनुरूप परिपक्व हो रहे हैं। ईश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए अद्वितीय स्वभाव वाले अच्छे या बुरे लोगों को सत्ता में आने की अनुमति देता है। जो लोग नाज़रेत के यीशु के मानव शरीर में मसीह को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, जिन्हें भगवान ने कब्र से पुनर्जीवित किया था, उन्हें बचाया जाएगा यदि उनका विश्वास आज्ञाकारिता की क्रिया उत्पन्न करता है। सुसमाचार उन लोगों के लिए आज्ञाकारिता के लिए ईश्वर का आह्वान है जो अपना दिल खोलते हैं। भगवान को खेद है कि उनके कुछ लोग विपरीत हो गए और दूर चले गए, लेकिन यदि वे क्षमा मांगने के लिए उनके पास लौटते हैं तो उन्हें बहाल किया जा सकता है, अन्यथा वे हमेशा के लिए खो जाएंगे। एक ईसाई द्वारा जीवित बलिदान एक ऐसा जीवन है जो परीक्षण किए जाने पर भी सांसारिक जीवन के अनुरूप नहीं होता है। क्राइस्ट द्वारा बनाया गया चर्च मानव शरीर की तरह है, क्योंकि दोनों को कई कार्य करने होते हैं, जैसे क्षमा का अपना संदेश देना, धार्मिक जीवन जीने का तरीका सिखाना, निष्ठा को प्रोत्साहित करना, निराश्रित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करना, दूसरों को ईश्वर की समानता में परिपक्व होने के लिए नेतृत्व करना और प्रशिक्षित करना, प्यार में दया दिखाना, शांति से जीना, टकराव से बचें, झगड़ा करने के लिए नहीं, प्राधिकार की अवहेलना नहीं, दायित्वों का समय पर भुगतान करें, किसी ऐसे भाई की धर्मग्रंथ की व्याख्या पर निर्णय न पारित करें जो आपकी समझ से सहमत नहीं है, लेकिन उसके साथ पढ़ो। उन लोगों से बचें जिनकी कुछ शिक्षाओं की व्याख्याएं ही एकमात्र संभावित सही हैं और जो इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी समझ को हर ईसाई द्वारा हर जगह और हर समय स्वीकार किया जाना चाहिए। कुरिन्थियों को लिखा पहला पत्र स्थानीय मंडली में विभाजन को ईसाइयों द्वारा किसी व्यक्ति या उसकी शिक्षा के बाद बनाया जाता है। इसलिए मसीह का शरीर ईसाइयों का एकजुट कामकाजी निकाय नहीं है। किसी शिक्षक या उपदेशक का अनुसरण करने से ईश्वर या मसीह की महिमा नहीं होती। मसीह की कलीसिया के लोगों के लिए वह परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि है। मसीह को स्वीकार करने वाले बहुत से लोग अमीर और शक्तिशाली नहीं हैं। भले ही उनके पास इस दुनिया की वस्तुओं और शिक्षा की कमी हो, लेकिन वे विश्वास के धनी हैं। मसीह के सुसमाचार की घोषणा सरलता और विनम्रता से की जानी चाहिए, न कि ऊंचे शब्दों वाले वक्ता द्वारा। बपतिस्मा के गाड़ने से पुनर्जीवित हुए लोगों में परमेश्वर ने आत्मा डाल दी। यह आत्मा आपके विचारों को जानती है और लगातार ईश्वर से संवाद करती रहती है। चर्च निकाय के भीतर विभाजन और ईर्ष्या विकास को रोकते हैं। वे परमेश्वर की समानता में परिपक्व होने के निर्देशों को समझने में असमर्थ हैं। सुसमाचार की नींव सबसे पहले किसी के द्वारा रखी जाती है, फिर अन्य लोग ईश्वर की नई रचना को सिखाते और सुसज्जित करते हैं कि उसे प्रसन्न करते हुए कैसे जीना है। मसीह के सेवकों को उसके प्रति वफादार रहना है। उन्हें साथी ईसाइयों के दिलों का न्याय नहीं करना चाहिए। ईसाई शिक्षकों को दूसरों को ईसा मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षाओं के बारे में निर्देश देना चाहिए। सुसमाचार का प्रचार करने वालों को उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहिए जिन्हें सिखाया जा रहा है, भले ही धर्मनिरपेक्ष नौकरी पर काम करना आवश्यक हो जाए। एक ईसाई के अधर्मी कार्य जो समुदाय द्वारा अस्वीकार्य हैं, उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। चर्च निकाय द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर ऐसी कोई भी कार्रवाई अनुमोदन का संकेत देती है। व्यक्ति का सामना करना और उसे सुधारना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन यदि भाई नहीं बदलता है तो उन्हें उसके पश्चाताप को प्रोत्साहित करने और मसीह के पास लौटने के लिए उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। ईसाइयों के बीच शिकायतों और असहमतियों का निपटारा चर्च निकाय द्वारा किया जाना चाहिए, न कि अविश्वासियों की अदालत में। किसी के लिए गैर ईसाइयों द्वारा दोषी ठहराए जाने की तुलना में अपने भाई द्वारा धोखा खाना बेहतर है। ऐसा करने से मसीह का उपहास और अपमान होता है। यौन रूप से अनैतिक, लालची, विवाह अनुबंध तोड़ने वाले और बुरे काम करने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। जो कुछ भी अच्छा और स्वीकार्य है, वह सहायक नहीं हो सकता। किसी धर्मनिरपेक्ष कार्य को अपने जीवन पर हावी न होने दें। किसी के साथ वैवाहिक रिश्ते में रहना, लेकिन विवाह में शामिल न होना अनैतिक है। किसी भी विवाहित जीवनसाथी को सेक्स, स्नेह, साहचर्य और प्रेम के शारीरिक जुनून को पूरा करने से खुद को नहीं रोकना चाहिए। तनाव या उत्पीड़न के समय में शादी न करना ही बेहतर है, जिससे अधिक तनाव पैदा हो सकता है। जो विवाहित हैं, उन्हें अलग नहीं होना है, लेकिन यदि अलगाव होता है तो उन्हें अविवाहित रहना है या सुलह कर लेना है। यदि कोई अविश्वासी जीवनसाथी विवाह में वफादार रहना चाहता है या चाहता है तो उसे तलाक न दें। यदि कोई अविवाहित व्यक्ति अपने शारीरिक जुनून को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो वासना से शादी करना या यौन रूप से अनैतिक बनना बेहतर है। एक विधवा ईसाई, पुरुष या महिला, को किसी अविश्वासी से शादी नहीं करनी चाहिए। सुसमाचार के उद्घोषकों को मसीह के सेवक के रूप में उनके काम के लिए अन्य ईसाइयों द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। जब इसराइली अपने मिस्र के बंधन से चले गए तो वे पानी से गुजरे और भगवान के बादल के नीचे वे मूसा के माध्यम से भगवान द्वारा दी गई वाचा के तहत भगवान की संतान बन गए। जैसे ही वे उसके बच्चों के रूप में परिपक्व हुए, उन्होंने परमेश्वर का भोजन भी खाया और उसका पानी भी पिया। यह एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है कि कैसे व्यक्तियों को मसीह के रक्त में बपतिस्मा दिया जाता है और वे मसीह द्वारा दी गई नई वाचा के तहत ईश्वर की संतान बन जाते हैं। आज परीक्षा होती है, इसलिए जो कोई यह समझे कि मैं खड़ा हूं, वह सावधान रहे, कहीं गिर न पड़े। कोई ऐसी परीक्षा तुम पर नहीं पड़ी जो मनुष्य के लिए सामान्य न हो। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से अधिक परीक्षा में न पड़ने देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का मार्ग भी देगा कि तुम सह सको। संकलक की टिप्पणी, हमेशा अपनी इच्छाओं से अधिक दूसरों के लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करें। याद करें, यीशु ने कहा था कि दूसरी बड़ी आज्ञा थी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। टिप्पणी समाप्त करें। किसी के निर्णय लेने वालों को उनके कार्यों से सम्मानित किया जाना चाहिए क्योंकि वे उनके कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं। पति और पत्नियां एक दूसरे पर निर्भर होते हैं क्योंकि वे विवाह में एक साथ जुड़ जाते हैं। चर्च सभा में ऐसी शिक्षाएं और प्रथाएं हो सकती हैं जो विभाजन का कारण बनती हैं। इसके परिणामस्वरूप एकता और भाईचारा खंडित हो जाता है। प्रभु भोज में खाई जाने वाली रोटी ईसाइयों को मानव शरीर में भगवान यीशु की याद दिलाने के लिए है, जिन्होंने पापों की क्षमा के लिए एकमात्र बलिदान के रूप में अपने पाप रहित शरीर की पेशकश की थी। बेल का फल उसके प्रायश्चित बलिदान के रक्त का प्रतिनिधित्व करता है जो क्षमा लाता है। क्षमा लाने वाले मसीह पर ध्यान केंद्रित किए बिना उनके स्मारक पर्व में भाग लेना एक अस्वीकार्य अनुष्ठान है। इस प्रकार इसे अयोग्य तरीके से लिया जाता है। जब ईसाई एक साझा भोजन के उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं तो एकता और संगति मौजूद होनी चाहिए। आत्मा मसीह के शरीर के सदस्यों को प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न गतिविधियां देता है, इसलिए प्रत्येक सदस्य से प्रत्येक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। इन विभिन्न गतिविधियों में शामिल हैं: दूसरों को वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित करना, ईश्वर को स्वीकार्य और प्रसन्न होकर कैसे जीना है यह सिखाना, सुसमाचार की घोषणा करना और सभी सदस्यों को उनके शिक्षण, उनके उदाहरण और उनकी गतिविधियों का अवलोकन करके परिपक्वता की ओर सहायता करना। प्रेम के बिना आध्यात्मिक मनुष्य कुछ भी नहीं है। जब समय समाप्त होता है तो आशा वास्तविकता बन जाती है और विश्वास समाप्त हो जाता है क्योंकि सभी चीजें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन प्रेम ईश्वर का सार है और हमेशा कायम रहता है। जब मसीह में विश्वास करने वाले लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो सभी से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन एक ही समय में सभी भाग लेने से भ्रम पैदा होता है और बाहरी लोग आपको अजीब और दिमाग से बाहर समझते हैं। भ्रम को दूर करने के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से प्रत्येक वक्ता को एक-एक करके बोलना चाहिए। पल्पिट उपदेशक जैसे पेशेवर वक्ता द्वारा तैयार किए गए संदेश का कोई उल्लेख नहीं है। बोलने वाले की पत्नियों को अपने घर की गोपनीयता में स्पष्टीकरण मांगने की प्रतीक्षा करके सम्मान और आदर दिखाना चाहिए। जैसा कानून कहता है, संभवतः यहूदियों के बीच एक परंपरा थी। सुसमाचार मसीह है। पाप के लिए उसका प्रायश्चित बलिदान, गाड़ना, पुनरुत्थान, प्रकट होना और स्वर्गारोहण। आदम ने अवज्ञा करके मृत्यु लाई। आज्ञाकारिता के माध्यम से मसीह जीवन लाता है। किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्यों पर उसके साथियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। नया जीवन शुरू होने से पहले भौतिक बीज को अवश्य दफना देना चाहिए। यह बात आध्यात्मिक बीजों के लिए भी सत्य है। पापपूर्ण जीवन के लिए मृत्यु होनी चाहिए, मसीह के रक्त में दफन होना चाहिए, जिसे बपतिस्मा भी कहा जाता है, इससे पहले कि एक नया आध्यात्मिक जीवन भगवान द्वारा पुनर्जीवित किया जा सके। शारीरिक रूप से मृतकों का शरीर अविनाशी में बदल जाएगा। जब कोई जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होता है तो उसे नियमित रूप से धनराशि अलग रखनी होती है और अंतिम क्षण तक इंतजार नहीं करना होता है। कुरिन्थियों को पॉल का दूसरा पत्र यह कहते हुए उन्हें प्रोत्साहित करता है, ईश्वर अपने बच्चों को उनके कष्टों में सांत्वना देता है, जिसके कारण व्यक्ति को स्वयं के बजाय ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। प्रार्थना से आराम मिलता है और दूसरों को परीक्षणों और तनाव से उबरने में मदद मिलती है। परमेश्वर की आत्मा को उसकी मुहर के रूप में पुनर्जीवित नई सृष्टि में डाला गया था। यह आत्मा ईश्वर के साथ निरंतर संचार में रहती है। स्वेच्छा से पाप करने वाले भाई से बहुमत द्वारा संगति हटाना पश्चाताप लाने के लिए आवश्यक हो सकता है। एक त्यागपूर्ण जीवन व्यक्तिगत इच्छाओं का स्थान ले लेता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो वाचा दी वह मृत्यु ले आई। मसीह द्वारा स्थापित नई वाचा शाश्वत जीवन लाती है और अंततः एक परिवर्तित शरीर को ईश्वर की समानता में लाती है। जीवन के सुख इस संसार के देवता हैं और वे अविश्वासी के मन को बांधते हैं। भौतिक शरीर एक अस्थायी निवास है। मसीह में उन लोगों के आध्यात्मिक शरीर का स्थायी निवास हाथों से नहीं बनाया गया घर है। स्वर्ग अब स्वर्ग में है, जैसा कि पॉल के स्वर्ग में उठाए जाने और ऐसी बातें सुनने से प्रमाणित होता है जो मनुष्य नहीं बोल सकता। एक नई रचना पाप की मृत्यु, मसीह के रक्त में दफन और एक नए जीवन के पुनरुत्थान का परिणाम है, जिससे मसीह के माध्यम से दूसरों को भगवान के साथ मिलाने के लिए एक राजदूत बन जाता है। यह नई रचना होनी चाहिए। अविश्वासियों के साथ संगति में न रहो। जब कोई भाई पश्चाताप करता है और मसीह के पास लौटता है तो आनंद मनाओ। स्वयं को मसीह को समर्पित करने का परिणाम दूसरों के लिए सर्वोत्तम कार्य करना है। प्रतिबद्धताओं को स्वेच्छा से पूरा करें, उन्हें करने पर पछतावा न करें। ईश्वर को आपके प्रयासों को धार्मिकता की ओर उपयोग करने की अनुमति दें। सतर्क रहो। कुछ धोखेबाज लोग भाई का भेष तो बनाते हैं, परंतु मसीह को नहीं सिखाते। अपने विश्वास की लगातार जांच करें ताकि आप गिर न जाएं। पहली नज़र में गलातियों को लिखी पत्री उन ईसाइयों को संबोधित प्रतीत होती है जो यहूदी धर्म की अपनी परंपराओं से पीछे हट रहे थे या उनसे चिपके हुए थे। उनमें से कुछ गैर यहूदी ईसाइयों से भी पुरानी वाचा के सिद्धांतों को स्वीकार करने की मांग कर रहे थे, जिसमें खतना, एक धर्मांतरण की आवश्यकता शामिल थी। संकलक की टिप्पणी एक धार्मिक मतांतरित एक गैर यहूदी है जो यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गया है। वह यहूदी धर्म के सभी सिद्धांतों और उपदेशों से बंधा हुआ है और उसे यहूदी लोगों का पूर्ण सदस्य माना जाता है। धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति का वयस्क होने पर यदि पुरुष हो खतना किया जाता है और औपचारिक रूप से रूपांतरण को प्रभावित करने के लिए पानी के किसी भी प्राकृतिक संग्रह में डुबोया जाता है। टिप्पणी समाप्त करें। ईसाइयों के पास आज धर्म ग्रंथों की अपनी व्याख्याओं की अपनी परंपरा है, फिर वे दूसरों से उनके और ईसा मसीह के साथ संगति में रहने के लिए उनका अनुसरण करने की मांग करते हैं। अक्सर ये परंपराएं उनकी पूर्व धार्मिक शिक्षाओं से होती हैं। इसलिए यह प्रत्येक ईसाई के लिए अनिवार्य है कि वह मसीह के संदेश की खोज करे, समझे कि ईश्वर क्या चाहता है, फिर विश्वास और विश्वास के माध्यम से उसका पालन करें। जब मनुष्य अपनी व्याख्याओं के अनुपालन और आज्ञाकारिता की मांग करता है तो वह मसीह के शरीर, उसके चर्च को विभाजित कर देता है। पापों की क्षमा मसीह का अनुग्रह का उपहार है, जिसे स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अर्जित नहीं किया जा सकता है। नई वाचा का संदेश मसीह को अपने प्रायश्चित बलिदान के रूप में स्वीकार करना और उनमें विश्वास और उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनके जीवन और शिक्षाओं के अनुसार जीना है। क्योंकि जो कोई व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि कोई भी पुरानी वाचा के सभी नियमों को पूरी तरह से नहीं रख सकता है। लेकिन मसीह ने हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें कानून के अभिशाप से बचाया, ताकि हम विश्वास के माध्यम से वादा की गई आत्मा प्राप्त कर सकें। कानून पापों के कारण तब तक जोड़ा गया जब तक कि संतान यीशु, जिसके साथ वादा किया गया था, नहीं आया। पुरानी वाचा ने हर चीज को पाप के अधीन कैद कर दिया, ताकि यीशु मसीह में विश्वास का वादा उन लोगों को दिया जा सके जो विश्वास करते हैं। अब विश्वास आने से पहले हमें कानून के तहत बंदी बना लिया गया था, जब तक कि आने वाला विश्वास प्रकट नहीं हो जाता तब तक कैद में रखा गया। सो मसीह के आने तक व्यवस्था हमारी संरक्षक थी कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु अब जब विश्वास आ गया है तो हम अब किसी संरक्षक के अधीन नहीं हैं, क्योंकि मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुम सब परमेश्वर के पुत्र हो। क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। न कोई यहूदी है, न यूनानी, न कोई दास है, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहीम की संतान भी हो और प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस भी हो। मसीह ईश्वर का क्षमा का उपहार है और मुक्ति राष्ट्रीयता, नस्ल या लिंग द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन अब जब आप ईश्वर को जान गए हैं, या यूं कहें कि ईश्वर द्वारा जाने जाने लगे हैं, तो आप फिर से दुनिया के कमजोर और बेकार प्राथमिक सिद्धांतों की ओर कैसे लौट सकते हैं जिनके गुलाम आप एक बार फिर बनना चाहते हैं। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो और फिर से गुलामी के जुए में मत झुको। देखो, मैं पॉल तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम खतना को स्वीकार करते हो, एक अन्य सुसमाचार के रूप में मूसा पर निर्भरता को स्वीकार करते हो, तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। मैं हर उस व्यक्ति को फिर से गवाही देता हूँ जो खतना स्वीकार करता है इसके सिद्धांतों और उपदेशों से बंधा हुआ, कि वह पूरे कानून का पालन करने के लिए बाध्य है। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरते, तुम मसीह से अलग हो गए हो, तुम अनुग्रह से दूर हो गए हो। परमेश्वर के पुत्रों के रूप में शरीर की इच्छाओं का पालन न करें, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें परमेश्वर का राज्य विरासत में नहीं मिलेगा। इन इच्छाओं में शामिल हैं यौन अनैतिकता, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, शत्रुता, कलह, दाह करना, क्रोध प्रदर्शन, प्रतिद्वंद्विता, मतभेद, प्रभाग, ईर्ष्या करना, शराबीपन और तांडव। लेकिन ईश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से आत्मा का फल पैदा करने वाला जीवन जीते हैं, जो हैं प्यार, आनंद, शांति, धैर्य, दयालुता, अच्छाई, वफादारी, सज्जनता और आत्मसंयम। जो लोग मसीह में हैं उन्हें पाप में फंसे एक साथी ईसाई को धीरे से बहाल करना है। जिन लोगों को पृथ्वी पर रहते हुए मसीह के जीवन, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, शिक्षाओं और जीवन के बारे में सिखाया और स्वीकार किया गया, वे सुसमाचार के उद्घोषकों की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बाध्य हैं। आप जो जीवन जीते हैं वह बीज है जिसे आप बोते हैं। इसलिए शारीरिक इच्छा का बीज भ्रष्टाचार पैदा करेगा, जबकि आत्मा का बीज अनंत जीवन प्राप्त करता है। पॉल इफिसियों को मसीह के ईश्वरत्व के बारे में समझाता है। ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रकृति, छवि और समानता में चुनने की क्षमता के साथ बनाया, यह जानते हुए कि अंततः उसकी रचना उसकी आज्ञाओं के स्थान पर अपनी इच्छाओं को चुनेगी। उसने पहले से योजना बनाकर उन्हें अपने साथ मिलाने का एक तरीका पूर्व निर्धारित किया। तो मनुष्य के रूप में देवता यीशु मसीह क्षमा के उपहार के रूप में प्रायश्चित बलिदान बन जाएगा। फिर कोई भी यहूदी या गैर यहूदी जिसने मसीह के प्रति विश्वास और आज्ञाकारिता द्वारा उसके उपहार को स्वीकार करना चुना, उसे मसीह के चर्च में डाल दिया गया। उसी में किसी को क्षमा किया जाता है, छुटकारा दिलाया जाता है और मिलमिलाप किया जाता है। शुरुआत से ही ईश्वर की योजना है। इसलिए अंतिम युग के दौरान बिल्कुल सही समय पर पुरानी वाचा की पूर्ति के बाद का समय सभी मानव जाति को मसीह के सुसमाचार का पालन करके अपने पापों को माफ करने और मोक्ष पाने का अवसर मिलेगा। मसीह में उनके पास है पाप मुक्ति, एकता, एक विरासत, आशा, ईश्वर की आत्मा तक पहुंच, भगवान के साथ निवास स्थान, अनंत जीवन। छुटकारा पाए हुए लोगों को एकजुट होना है, ईश्वर के स्वभाव और समानता में परिपक्व होने का प्रयास करना है, विनम्र, कोमल, दयालु, प्यार करने वाला, सच बोलना, ईमानदारी से काम करते हुए किसी भी जरूरतमंद के साथ साझा करना, कपटपूर्ण इच्छाओं को दूर करना, क्रोधित होने पर पाप नहीं करना, चोरी नहीं, यौन अनैतिकता, गंदी और मूर्खतापूर्ण बातें और भद्दे और अश्लील चुटकुलों से दूर रहो। जब ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उन्होंने कुछ विशिष्ट कार्य दिए। प्रेरित पुनर्जीवित मसीह के प्रत्यक्षदर्शी खुशखबरी की घोषणा करने के लिए कि उद्धारकर्ता और उसकी क्षमा और मोक्ष का उपहार उन सभी के लिए उपलब्ध है जो उसके उपहार को स्वीकार करते हैं। पैगंबरों को पवित्र आत्मा से प्राप्त ईश्वर का रहस्योद्घाटन देना। सुसमाचार प्रचारक खोए हुए लोगों को सुसमाचार मसीह का प्रचार करने के लिए। पादरी और शिक्षक मसीह में परिपक्वता और एकता के लिए भाइयों की रक्षा करना, निगरानी करना, सिखाना और मार्गदर्शन करना, राय नहीं, हालांकि उसमें सभी हैं। देखें कि वे अपना आध्यात्मिक जीवन कैसे जीते हैं। शारीरिक इच्छाओं का सामना करें। भगवान की इच्छा को समझो। परमेश्वर की आत्मा उसके स्वभाव से भर जाओ। अपने भाइयों की जरूरतों को व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर रखें। शैतान की अंधेरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए ईसाइयों को स्वयं को ईश्वर और उसके कवच से घेरना चाहिए जो है सच। सुसमाचार की तैयारी। आस्था, परमेश्वर का वचन, मोक्ष, प्रार्थना। ईसाइयों के कुछ समूहों को विशिष्ट निर्देश दिए गए। पत्नियां पतियों का आदर करो और वही करो जो परमेश्वर को प्रसन्न हो। पति पत्नी की शारीरिक और आध्यात्मिक जरूरतें पूरी करते हैं। बच्चे ध्यान से सुने, किसी आदेश या अधिकार पर ध्यान दें। बंधुआ सेवक जो पूरी तरह से दूसरे को सौंप दिए गए हैं, उन्हें मसीह की तरह सेवा करनी है, आंखों की सेवा नहीं बल्कि दिल से भगवान की इच्छा पूरी करनी है। सभी ईसाई हैं, मसीह के शरीर के लिए आवश्यक कार्य करें। मसीह और उसके प्रेरितों की शिक्षा का पालन करें। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले अच्छे कार्य करो। पुनर्जीवित मसीह, उनके जीवन और उनके संदेश का विभिन्न तरीकों से प्रचार करें। पॉल ने अपने फिलिपी साथियों को धन्यवाद और प्रोत्साहन दिया। ईसाई सुसमाचार के भागीदार हैं। इस मामले में पॉल और फिलिप्पियों, हर जगह सभी ईसाइयों को सुसमाचार प्रचार करते समय प्रचारकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जहां वे काम करते हैं वहां उनसे मिलना प्रोत्साहन का एक उत्कृष्ट साधन है और समर्पित सेवक के लिए मंडली के प्यार और चिंता को व्यक्त करने का एक तरीका है जो मसीह की घोषणा करते समय कई कठिनाइयों को सहन करता है। पॉल ने, जैसा कि आज के प्रचारकों को करना चाहिए, फिलिप्पियों को अपना धन्यवाद, प्यार और चिंता भेजी। उन्होंने उन्हें मसीह के सुसमाचार के योग्य जीवन जीने, शुद्ध और निर्दोष को समझने के लिए ज्ञान से भरपूर होने और ईश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। एकजुट रहें। स्वार्थी महत्वाकांक्षा के कारण कुछ न करें। यह देखो कि दूसरों के लिए क्या सर्वोत्तम है। सभी काम बिना कुड़कुड़ाए या विवाद किए करो। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन से प्रयास करें। मसीह के उन शत्रुओं पर नजर रखें और उन पर नजर रखें जो आपको आपके पूर्व जीवन के तरीके पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। मसीह के सेवकों को झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि प्रभु में सहमत होना चाहिए। शारीरिक या आध्यात्मिक के बारे में चिंता या चिंता मत करो। राय और व्यक्तिगत व्याख्याओं पर बहस न करें। अंत में, भाइयों, जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो इन बातों पर विचार करो। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा और ग्रहण किया और सुना और मुझ में देखा है, उन पर चलो और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। एक मंडली को अपने प्रचारकों की भौतिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनके प्यार और चिंता को भी व्यक्त करना चाहिए, ताकि उन्हें यह महसूस न हो कि वह अकेले हैं। पॉल ने कुलुस्सियों ईसाइयों को लिखा, एक ईसाई को मसीह की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण होने और योग्य जीवन जीने और फल पैदा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। मसीह ने उन लोगों को, जिन्होंने आज्ञाकारिता के माध्यम से अपना भरोसा रखा है, शैतान के अंधकार निवास के क्षेत्र से बचाया है और मसीह के प्रायश्चित बलिदान के माध्यम से क्षमा द्वारा उन्हें मसीह के राज्य में स्थानांतरित कर दिया है। मसीह परमेश्वर की सटीक छवि और रहस्य है। स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी चीजें उसके द्वारा और उसके माध्यम से बनाई गईं। वह सभी चीजों को एक साथ रखता है। भगवान उसमें निवास करते हैं। वह अपने रक्त बलिदान के माध्यम से सभी चीजों को अपने साथ समेट रहा है। यदि ईसाई सुसमाचार से दूर न जाते हुए विश्वास में बने रहें, तो वह उन्हें पवित्र बना देगा। निहितार्थ से, जो लोग विश्वास में बने नहीं रहते, वे मसीह से दूर चले गए हैं और उन्हें पवित्र नहीं बनाया जाएगा। मसीह यहूदी और अन्य जातियों से छिपा हुआ रहस्य है, क्योंकि उसमें क्षमा और मुक्ति का अवसर है। ईसाइयों को चेतावनी। मानवीय परंपराओं को आपको धोखा देने और शैतान का बंदी बनाने की अनुमति न दें। याद रखें, मसीह देवता हैं। वह ईसाइयों में निवास करता है क्योंकि उनके पाप के शरीर को हटाकर आध्यात्मिक रूप से खतना किया गया है और ईसा मसीह के रक्त में दफनाया गया है, जिसे बपतिस्मा या विसर्जन के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद भगवान ने उनके पापों को माफ कर दिया, उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया और उन्हें मसीह के राज्य में डाल दिया। त्योहारों और न खाने पीने की चीजों के नियम सांसारिक पुरानी वाचा के हैं, जो बेहतर स्वर्गीय वाचा की छाया मात्र थी। यह स्वर्गीय वाचा सीधे मानव शरीर में ईश्वर के रूप में यीशु से आएगी। स्वयं को पवित्र बनाने के लिए आत्मअपमान या तपस्या पर भरोसा न करें। पवित्रता मसीह में होने से आती है। ईसाइयों को स्वयं से छुटकारा पाना होगा। सांसारिक यौन और अशुद्ध जुनून, लोभ, गुस्सा, द्वेष, बदनामी, अश्लील बातें, झूठ बोलना, एक नया आध्यात्मिक व्यक्ति बने। मसीह की तरह जियो, 16 प्रेम में रहो, जो सभी अच्छी चीजों को एक साथ बांध देगा। ईश्वर की इच्छा का ज्ञान उत्पन्न होता है। दयालु हृदय, दयालुता, विनम्रता, नम्रता, धैर्य, मसीह के नाम पर और उसके अधिकार से एक दूसरे को सिखाएं, चेतावनी दें और प्रोत्साहित करें। दूसरों के साथ व्यवहार इस बात पर आधारित होना चाहिए कि रिश्ते के लिए सबसे अच्छा क्या है। पत्नियों, पतियों, बच्चों, दास दासियों और स्वामियों को सभी के साथ मसीह के तरीके और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, जो सभी का प्रभु है। प्रथम थिस्सलुनीकियों, जो लोग मसीह में हैं, उन्हें विश्वास, प्रेम के परिश्रम और दृढ़ता का उदाहरण होना चाहिए। उन्हें शैतान के प्रलोभनों के प्रति सचेत रहना है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। वे इस प्रकार हैं। परीक्षणों और संघर्षों के समय में प्रचार करें। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धन, शक्ति या प्रतिष्ठा के लिए उपदेश देते हैं। सुनने वालों को जो अच्छा लगता है, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। परीक्षण होने की उम्मीद है। ऐसा काम करें कि दूसरों पर बोझ न बने। प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करें। शांति से रहने और अपने मामलों पर ध्यान देने की आकांक्षा रखें। उन लोगों का सम्मान करें जो अपना जीवन मसीह के कार्य के लिए समर्पित करते हैं। शांति से रहो, संघर्ष से नहीं। प्रोत्साहित करें, प्रार्थना करें, आनंद मनाएं और धैर्य रखें। अच्छा करने के तरीके खोजें। सभी परिस्थितियों में धन्यवाद दें। शरीर, आत्मा और आत्मा को निर्दोष रखें। ईसा मसीह के दूसरे आगमन का समय अज्ञात है, लेकिन जब ऐसा होगा तो कब्र में ईसाइयों के शरीर पुनर्जीवित हो जाएंगे और एक अमर आत्मा शरीर में बदल जाएंगे और बादलों में मसीह से मिलेंगे। तब मसीह में जीवित लोग उनके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनिकियों। मसीह की वापसी के संबंध में अफवाहों से चिंतित न हो। मसीह दोबारा तब तक नहीं आएंगे जब तक शैतान उन लोगों को धोखा नहीं देता जो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि वे बचाए जाने के लिए सत्य से प्रेम करने से इनकार करते हैं। वह अपनी शक्ति और नकली चिन्हों और चमत्कारों से दूसरों को धोखा देगा। जब मसीह आएगा तो वह उन लोगों को प्रतिशोध और अनंत मृत्यु के साथ न्याय देगा जिन्होंने उसके लोगों पर अत्याचार किया था। चूंकि मसीह के दूसरे आगमन का समय अज्ञात है, सुसमाचार का प्रचार करके, अच्छे कार्य करके और उसकी महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करके मसीह के सेवक बने रहें। उन लोगों को भोजन न दें या जीवन की जरूरतों की आपूर्ति न करें जो सक्षम हैं, लेकिन अपना भरण पोषण करने से इनकार करते हैं। वास्तव में उनके साथ संगति या संगति न रखें, लेकिन उनके साथ शत्रु जैसा व्यवहार न करें। प्रथम तीमुथियुस। उन लोगों का सामना करें जो ईसाइयों को सिखाते हैं कि उन्हें अपनी पूर्व धार्मिक मान्यताओं की परंपराओं को बनाए रखना चाहिए, ऐसी मान्यताएं जो मसीह और प्रेरित की शिक्षाओं के विपरीत हैं। वे विमुख हो गए हैं और अपनी पूर्व धार्मिक मान्यताओं पर वापस चले गए हैं। देशों के शासकों सहित सभी लोगों के लिए हिमायत और प्रार्थना करें। क्षमा न किए गए पाप के दाग के बिना प्रार्थना करें। महिलाओं को सिखाएं कि लुभावने कपड़े पहनकर कामुक चीजों की ओर ध्यान न आकर्षित करें, जैसा कि अमीर और प्रभावशाली लोग करते हैं। जो लोग अपने भाइयों को धर्मी सेवक बनाने की इच्छा रखते हैं, वे नेतृत्व और मार्गदर्शन के अच्छे या महान कार्य की इच्छा रखते हैं। ध्यान दें कि यह एक कार्य है, न कि सत्ता और प्रतिष्ठा का कार्यालय। उनका काम मसीह में मौजूद लोगों को ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन देकर ईश्वर की समानता में परिपक्व होने में मदद करना है। बाहरी लोग उनके बारे में अच्छी तरह सोचें ताकि वे बदनाम न हों और शैतान के फंदे में न फंसे। कुछ ईसाई स्वयं को भ्रामक झूठ में समर्पित कर देंगे। इस प्रकार वे किसी को शादी करने से रोकने और कुछ खास भोजन खाने से परहेज करने जैसी प्रथाओं से उनके विवेक को घायल कर देते हैं। किसी वृद्ध पुरुष या महिला को सुधारने में कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। बच्चों और पोते पोतियों को अपने जरूरतमंद माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए मसीह के संदेशों के अलावा अन्य संदेश पढ़ाते हैं। संदेश बाइबल में नहीं मिले। जो लोग अमीर बनने की इच्छा रखते हैं, वे भगवान के बजाय पैसे की अनिश्चितताओं पर अपनी आशा रखते हैं। अमीरों को उदार होना चाहिए और जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा टिमोथी। हमेशा परमेश्वर के सेवकों को प्रोत्साहित करें, विशेषकर उन लोगों को जो घर से दूर रहकर मसीह का प्रचार कर रहे हैं। एक ईसाई की शाश्वत नीति सरल है। अग्रहम मसीह के साथ मरे हैं, हम उसके साथ जिएंगे भी। अग्रहम सहते हैं, हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। अग्रहम उसका इनकार करते हैं, वह भी हमारा इनकार करेगा। अग्रहम अविश्वासी हैं, वह विश्वासयोग्य बना हुआ है क्योंकि वह स्वयं का इनकार नहीं कर सकता। शब्दों और अपनी व्यक्तिगत व्याख्या के बारे में झगड़ा न करें। ईसाई भाई ईसा से विमुख हो सकते हैं। मसीह के शरीर में कुछ ऐसे हैं जिन्हें सम्माननीय सेवक बनने के लिए विकसित होने की आवश्यकता है ताकि वे भगवान की सेवा कर सकें। कुछ भाई स्वार्थी, लोभी, अभिमानी और अहंकारी होंगे। उनमें ईश्वरत्व का आभास हो सकता है। आपको उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो भाई बहन मसीह में ईश्वरीय जीवन जीते हैं, उन्हें संरक्षित किया जाएगा। मसीह में वे सभी जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उन्हें स्वर्ग का आश्वासन मिलता है। ईसाइयों की इच्छाएं, जिनका जीवन नियंत्रण में नहीं है, अपने पूर्व सांसारिक जीवन में वापस लौट आती हैं। सभी धर्मग्रंथ ईश्वर प्रेरित हैं और शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी हैं। उन लोगों को पहचानें और उनसे सावधान रहें जो ईसा मसीह और उनके संदेश का विरोध करते हैं। टाइटस, प्राचीनों को उन शिक्षकों का सामना करना चाहिए जो धन, शक्ति या प्रतिष्ठा के लालची हैं। वे मसीह के अलावा किसी अन्य चीज पर आधारित मिथकों और मुक्ति की शिक्षा देते हैं, जिससे भाइयों को मसीह से दूर किया जाता है। पढ़ाना सुनिश्चित करें। वृद्ध पुरुष आत्मनियंत्रित, दृढ़ विश्वास वाले और स्पष्ट विचारक हों। वृद्ध महिलाएं व्यवहार में श्रद्धावान, संयमी, निंदा करने वाली नहीं, शराब की आदि न हों, और छोटी महिलाओं को अपने पति और बच्चों के प्रति स्नेही, संयमी, घर की रखवाली करने की शिक्षा दें। नवयुवक आत्मनियंत्रित, अच्छे कार्यों का आदर्श, सत्यनिष्ठा और गरिमा रखते हैं। कर्मचारी आपके नियोक्ता जो काम सौंपते हैं, उसे बिना बहस या शिकायत किए पूरा करें और जो काम नियोक्ता का है, उसे न लें। ईसा मसीह क्षमा और मोक्ष लाने और अधर्मिता और सांसारिक जुनून को त्यागने के लिए पृथ्वी पर आए। वह दया और आज्ञाकारिता से बचाता है, कार्यों से नहीं। विश्वासियों को याद दिलाएं। सरकारी अधिकारियों के प्रति विनम्र रहें। अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहें। किसी के बारे में बुरा मत बोलो। झगड़ा करने से बचें। सभी लोगों के प्रति सौम्य और विनम्र रहें। अपने आप को अच्छे कार्यों के प्रति समर्पित करें। ऐसे मूर्खतापूर्ण विवादों से बचें जैसे यहूदी अपनी वंशावली के आधार पर किसी को इब्राहिम की संतान के रूप में भगवान का चुना हुआ दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलेमोन, अपने विश्वास को साझा करने से श्रोता तरोताजा हो जाते हैं। आपके जीवन और सुसमाचार के प्रति प्रेम के कारण भगवान दूसरों पर बड़ा प्रभाव डालने के लिए अवांछनीय घटनाओं का उपयोग कर सकते हैं और अक्सर करते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपका उपयोग करने के लिए ईश्वर का आभारी रहें और उसकी महिमा करें। ब्रा, आदम और हव्वा को धर्मी सांसारिक इंसानों के रूप में बनाया गया था और भगवान की उपस्थिति में रहने के लिए स्वर्ग में रखा गया था, लेकिन वे कर एक विद्रोही देवदूत शैतान के झूठ को सुनने का फैसला किया। ख शैतान का वादा चाहा। ग भगवान की आज्ञाओं को अस्वीकार कर दिया। घ अपने कार्यों के परिणाम के रूप में दर्द और मृत्यु प्राप्त की। सैटन के झूठ और मनुष्य के अवज्ञा के पाप के बाद भगवान ने शैतान को बताया कि मनुष्य की संतान मनुष्य पर उसकी पकड़ को नष्ट कर देगी जो कि मृत्यु है। इसलिए बिल्कुल सही समय पर मानव शरीर में देवता यीशु ने पृथ्वी पर आने और अपनी रचना के बीच एकमात्र और पूर्ण पाप बलि बनने के लिए रहने का फैसला किया। पिता ने यीशु के पुनरुत्थान के प्रमाण के रूप में उसकी पाप बलि स्वीकार कर ली। उसने अनंत मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए शैतान का सिर कुचल दिया। अब पुरानी वाचा के तहत धर्मियों के पाप माफ कर दिए गए। इसके बाद क्षमा, मुक्ति और मेलमिलाप उन सभी के लिए उपलब्ध हो गया जो आज्ञाकारिता द्वारा क्षमा चाहते हैं। इस मेलमिलाप प्रक्रिया का वर्णन पवित्र धर्म ग्रंथों में कई स्थानों पर किया गया है, जो यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद पहले पेंटेकोस्ट से शुरू होता है, जैसा कि अधिनियम 2 में दर्ज है। क्षमा किए गए लोगों के पास भी धार्मिकता से जीने या अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने का विकल्प होता है। समर्पण का अर्थ है अपने पूर्व पापी जीवन में लौटने और अपने अस्थाई सांसारिक सुख का आनंद लेने के लिए शैतान के झूठ को स्वीकार करना। इब्रानियों का लेखक मसीह के चर्च के उन लोगों को कड़ी चेतावनी देता है जो शैतान के झूठ से प्रलोभित होते हैं। सावधान रहें, मसीह और प्रेरित की शिक्षाओं को ध्यान से सुने, अन्यथा आप बहक सकते हैं और अंततः उनके बचाने वाले अनुग्रह को अस्वीकार कर सकते हैं। मनुष्य पर मसीह की श्रेष्ठता स्थापित करने के बाद पुरानी वाचा के उच्च पुजारी और स्वर्गदूतों ईसाइयों को उनकी पूर्व गैर बाइबल धार्मिक शिक्षाओं पर लौटकर बेवफा होने के बारे में चेतावनी दी गई है। ईश्वर ने शुरू में मनुष्य से सीधे बात की और बाद में भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बात की, लेकिन अब वह पुनर्जीवित मसीह के माध्यम से बोलता है जो सारी सृष्टि से श्रेष्ठ है। मसीह ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ है। मलिकिसिदक के आदेश पर एक ईसाई उच्च पुजारी है। एक पुजारी जो किसी की विरासत में मिली स्थिति पर निर्भर नहीं था, जैसा कि मूसा के माध्यम से दी गई वाचा के तहत उच्च पुजारी थे। आने वाला संसार अनंत जीवन और अनंत मृत्यु दोनों मसीह के अधीन है। मसीह अब पाप की क्षमा के लिए अपने मानव जीवित शरीर को एकमात्र बलिदान के रूप में पेश करके ईश्वर के पक्ष में है। ऐसा करके उसने इब्राहीम से किया वादा पूरा किया और मूसा के माध्यम से बनाई गई वाचा को पूरा किया और एक नई वाचा स्थापित करके इसे अप्रचलित कर दिया। वे सभी जो आज्ञाकारिता के माध्यम से मसीह को चुनते हैं, आध्यात्मिक प्राणी शुद्ध हो जाएंगे जब वे यीशु को भगवान के रूप में स्वीकार करें। पाप के लिए मरो, उसके खून में दफनाए गए हैं, भगवान ने मसीह के चर्च में डाल दिए हैं। जिस प्रकार एक शुद्ध शारीरिक व्यक्ति फिर से गंदा हो सकता है, उसी प्रकार एक शुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति भी दोबारा गंदा हो सकता है। यदि यह सच नहीं होता तो किसी मध्यस्थ की या ईसाइयों को चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि वे भ्रमित न हों और अपने पूर्व पापपूर्ण जीवन की ओर वापस न लौटें। एक भाई अविश्वासी हृदय को रास्ता दे सकता है और परमेश्वर से दूर हो सकता है। कठोर मत करो अपना हृदय और उसकी आवाज, उसके संदेश को अस्वीकार न करें। प्रवेश करने का प्रयास करें उसके विश्राम स्वर्ग में, ताकि तुम अवज्ञा के कारण न गिरो। तेजी से पकड़ो, ढीला मत हो जाओ। केवल मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान को जाने, बल्कि उनके जीवन को भी जाने और उनकी समानता में परिपक्व कैसे बने। उन प्रबुद्ध और क्षमाशील लोगों के लिए जो अपने पूर्व पापी जीवन में लौट आते हैं, उनके लिए मसीह के पास लौटना कठिन है। जो लोग जानबूझकर पाप करते रहते हैं, उनके लिए कोई पाप बलिदान नहीं है। दूर न फेंके नाप का विश्वास जिसका प्रतिफल बड़ा है। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा प्राण उससे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वे जो विश्वास रखते हैं और अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं। कोई सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता, समझ सकता है लेकिन विश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और विश्वास कर सकता है लेकिन प्रतिबद्ध होने और भरोसा करने के लिए पर्याप्त विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग भरोसा करते हैं, वे अपने कार्यों से अपने विश्वास और विश्वास को साबित करते हुए कार्रवाई करेंगे। यह विश्वास से है। हाबिल ने परमेश्वर को अधिक स्वीकार्य बलिदान अर्पित किया। इब्राहीम ने तब आज्ञा मानी जब उसे उस स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जो उसे विरासत के रूप में प्राप्त होना था। हनोक को इसलिए उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न देखे। नूह ने परमेश्वर द्वारा अभी तक अनदेखी घटनाओं के बारे में चेतावनी पाकर श्रद्धापूर्वक भय के साथ अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज का निर्माण किया। विश्वास से वह इब्राहीम प्रतिज्ञा के देश में जैसे परदेश में रहने चला गया। ये सब विश्वास में ही मर गए परंतु प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न पाकर परंतु उनको दूर से देखकर और नमस्कार करके और आशा से मानकर कि वे पृथ्वी पर परदेशी और निर्वासित थे मर गए। जब इब्राहीम की परीक्षा हुई तब उसने इसहाक को बलि चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाएं पाई थीं उसने अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाया जिसके विषय में यह कहा गया कि इसहाक से तेरी संतान का नाम रखा जाएगा। उसने सोचा कि परमेश्वर उसे मरे हुओं में से भी जीवित करने में सक्षम था जिससे लाक्षणिक रूप से कहें तो उसने उसे वापस प्राप्त कर लिया। इसहाक ने याकूब और एसाव पर भविष्य के आशीर्वाद का आह्वान किया। मरते समय याकूब ने यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को अपनी लाठी के सिर पर झुककर आशीर्वाद दिया। यूसुफ ने अपने जीवन के अंत में इसराइलियों के पलायन का उल्लेख किया और अपनी हड्डियों के संबंध में निर्देश दिए। जब मूसा का जन्म हुआ तो उसके माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा सुंदर था और वे राजा के आदेश से नहीं डरे। जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया और पाप के क्षणिक सुखों का आनंद लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना बेहतर समझा। मूसा ने राजा के क्रोध से न डरकर मिस्र छोड़ दिया क्योंकि वह अदृश्य को देखकर धीरज धरता रहा। मूसा ने फसह मनाया और लहू छिड़का। लोगों ने लाल सागर को ऐसे पार किया मानो सूखी भूमि पर हों। राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई क्योंकि उसने भेदियों का मित्रता से स्वागत किया था। जेम्स कई टिप्पणियां और चेतावनियां देते हैं। भगवान किसी को प्रलोभित नहीं करते। हालांकि जब कोई व्यक्ति वफादार रहता है तो वह उसके विश्वास की परीक्षा को दृढ़ता उत्पन्न करने की अनुमति देता है। प्रलोभन इच्छा से उत्पन्न होता है। जब कोई अपनी इच्छा पूरी करता है तो पाप होता है। क्रोध आने पर बोलने में देर करो क्योंकि क्रोध परमेश्वर का नहीं है। मसीह के उद्धार के संदेश का जब पालन किया जाता है और आंतरिक अस्तित्व में रखा जाता है तो यह वफादार जीवन और कार्यकर्ता पैदा करता है न कि बैठे बैठे दर्शक। ईसाई तब पूजा करते हैं जब इच्छा से विधवाओं और जरूरतमंदों की देखभाल करते हैं। गरीबों की तुलना में अमीरों के साथ बेहतर व्यवहार करने से भगवान नाराज हो जाते हैं क्योंकि गरीब विश्वास में समृद्ध होते हैं और राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। दया न्याय की मांग की सजा को नकार देती है। किसी के कार्य उसके प्रेम और विश्वास की डिग्री को प्रदर्शित करते हैं। कोई कार्य नहीं तो कोई विश्वास नहीं। जो बोला जाता है वह अच्छाई या बुराई उत्पन्न कर सकता है। इसलिए यदि कोई यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे क्या और कैसे बोलते हैं तो उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा सज्जनता दया और शांति के बजाय ईर्ष्या और अपमान का कारण बनती है। एक ईसाई जो दुनिया के साथ अपने रिश्ते के माध्यम से भगवान के साथ अपने अनुबंध के रिश्ते को तोड़ता है वह एक आध्यात्मिक व्यभिचारी है। ईश्वर के साथ निरंतर संबंध शैतान को दूर रखता है। किसी की बुराई या निंदा न करें। लोभ से अर्जित धन ईश्वर को पुकारता है। धर्मात्मा और धर्मी लोगों को अपने वचन की पुष्टि के लिए दूसरों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास कसम खाने का कोई कारण नहीं है। भाई मसीह से दूर भटक सकते हैं। उन्हें वफादार बने रहने के लिए मदद और प्रोत्साहन की जरूरत है। पहला पीटर मसीह के पुरुत्थान के माध्यम से उन सभी के लिए अनंत जीवन की आशा है जो नया जन्म लेते हैं। वे पाप के लिए मरकर मसीह के रक्त में दफन होकर एक नए आध्यात्मिक शरीर को जीवित करके और भगवान द्वारा मसीह के राज्य में डालकर फिर से जन्म लेते हैं। किसी के विश्वास को परखने के लिए परीक्षण होंगे। भविष्यवक्ताओं ने मसीह के जीवन के माध्यम से ईश्वर की कृपा की भविष्यवाणी की। जो लोग मसीह के संदेश को स्वीकार करते हैं उन्हें खुद को कार्रवाई के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने सभी सेवकों से अपेक्षा करते हैं कि वे काम करें और उनकी इच्छा पूरी करें, जैसा कि आप मसीह की आज्ञाकारिता से पहले करते थे वैसा ही जीना जारी न रखें। तुम्हें अपने आचरण में पवित्र रहना है और परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया था और पूर्व निर्धारित कर दिया था कि वह उस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट होगा जिसे वह मृतकों में से उठाएगा। इस प्रकार विश्वास और आशा उस पर टिकी रहेगी। पापों की सफाई शुद्ध, भरोसेमंद और आज्ञाकारी हृदय से पुनर्जन्म के माध्यम से होती है। मसीह का जीवन, मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण वह शुभ समाचार है जो आज और उसके बाद सभी को पापों की क्षमा प्रदान करता है। जो लोग उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं उन्हें परिपक्व होने और अपने उद्धार की ओर बढ़ने के लिए आध्यात्मिक भोजन का सेवन करना चाहिए। ईश्वर के सेवक के रूप में ईसाइयों को अपना जीवन जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना है। पुजारी के रूप में ईश्वर की महानता, मसीह के मिलमिलाप के संदेश का प्रचार करना है। इसलिए शरीर के जुनून से दूर रहें। मसीह में स्वतंत्र रहते हुए शासक शासकों के अनुरूप, नियोक्ताओं की मांगों के अनुरूप जीवन व्यतीत करें। पत्नियों को अपने पतियों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे अपने सौम्य और नम्र स्वभाव से अपने अविश्वासी पति के दिल में प्रवेश कर सकते हैं। पतियों को अपनी पत्नियों की चिंताओं और जरूरतों को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। अपने ईसाई परिवार के साथ बिना किसी भेदभाव के दिल और दिमाग से एकजुट रहें। यह समझाने के लिए स्वयं को तैयार करें कि आप बहुमत से भिन्न क्यों हैं। मसीह ने अधोलोक में, जो मर चुके लोगों की आत्माओं का निवास स्थान है, उन लोगों को एक संदेश दिया। नूह ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और पानी के माध्यम से उसे और उसके परिवार को बचाने के लिए जहाज का निर्माण किया, जो उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो ईसा मसीह के रक्त में बपतिस्मा के कार्य के माध्यम से ईश्वर को क्षमा करने के लिए कहते हैं। सुसमाचार का प्रचार उन लोगों को किया जाना था जो जीवित थे लेकिन अब मर चुके हैं, ताकि वे आत्मा में जीवित रह सकें। जब आप परमेश्वर की संतान के रूप में कष्ट सहते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। किसी दुष्ट, जैसे चोरी या हत्यारा, के परिणामस्वरूप दुहक उठाना परमेश्वर की महिमा नहीं करता। जो पुरुष लाभ के लिए नहीं, अपने भाइयों को ईश्वर के स्वभाव में परिपक्व होने और उनके सेवकों के रूप में काम करने के लिए प्रेरित करने के बजाय विनम्रतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, वे प्रेम और विनम्रता के उदाहरण हैं। शैतान के एजेंटों की तलाश में हमेशा सतर्क रहें, जो किसी के विश्वास को निगलने और नष्ट करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए आप निम्नलिखित में विकसित होकर विश्वास में बढ़ते हैं। सदाचार, उच्च नैतिक मानक, इच्छाओं और कार्यों का आत्मनियंत्रण, वफादारी, ईश्वरीय स्नेह, भगवान का प्रेम का स्वभाव। इन गुणों का अभ्यास करने में प्रयत्नशील रहो। बाइबल में दर्ज मसीह का संदेश मनुष्य के ज्ञान या उसकी व्याख्या से नहीं बल्कि ईश्वर से आया है। कुछ भाई मसीह के ईश्वरत्व को नकारते हैं। वे धन, शक्ति, प्रसिद्धि के लालच के लिए शिक्षा देते हैं और दावा करते हैं कि ईसा मसीह केवल एक प्रेत थे। उनकी निंदा की जाती है। स्वर्गदूतों ने पाप किया है। परमेश्वर ने उन्हें रसातल में भेज दिया, जो मसीह के लौटने और उसके बाद न्याय होने तक शाश्वत सजा का सबसे गहरा हिस्सा था। कुछ लोग जो जुनून में लिप्त रहते हैं और अधिकार से घृणा करते हैं, ईसाइयों के साथ संगति करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनका हृदय लालच में प्रशिक्षित है। क्योंकि यदि वे हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा जगत की अशुद्धियों से छूटकर फिर उनमें फंस गए और हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। क्योंकि उनके लिए भला होता कि वे धर्म का मार्ग कभी न जानते। ईश्वर चाहता है कि हर किसी को पाप से उसकी ओर मुड़ने का अवसर मिले। वह धैर्यवान है क्योंकि समय निरर्थक है, क्योंकि वह शाश्वत है। कुछ शिक्षाएं उन लोगों के लिए कठिन हैं जिन्हें ईश्वर या उसकी इच्छा के बारे में कम जानकारी है। कुछ शायद अपनी पसंद से, लेकिन कुछ दूसरों की शिक्षाओं के कारण, जिन्होंने अपने विश्वास के अनुरूप धर्म ग्रंथों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पहला जॉन। यीशु एक वास्तविक व्यक्ति थे जिसकी पुष्टि उन लोगों ने की जो लगातार उनके साथ थे, जिन्होंने उन्हें सुना, देखा और छुआ। वे प्रत्यक्षदर्शी हैं। परमेश्वर धर्मी है और जो लोग मसीह में हैं, वे मसीह के शुद्ध करने वाले लहू के कारण उसके साथ संगति में हैं। उसका प्रायश्चित बलिदान किसी को पवित्र बनाता है यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी और उसकी शिक्षाओं का पालन करने या उन्हें मानने से इनकार करने का विकल्प है। चूंकि ईश्वर प्रेम है, जो कोई अच्छाई की बजाय बुराई की कामना करता है, वह उसमें जीवित या चलता नहीं है। मसीह में जो लोग शारीरिक अभिलाषाओं की इच्छा रखते हैं और विनम्र होने के बजाय घमंडी हैं, वे संसार के हैं। उन्होंने मसीह को त्याग दिया है। मसीह के चर्च के भीतर कुछ लोग जो इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु मानव शरीर में ईश्वर थे, मसीह विरोधी हैं। जिन्होंने मसीह को स्वीकार कर लिया है और उनमें बने रहते हैं, उनके पास अनंत जीवन है। सामयिक पापों को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन ईसाई जो अपने पाप में जीने का अभ्यास करते हैं, मसीह में बने नहीं रहते हैं। ईसा मसीह का संदेश है, ईश्वर प्रेम है, कोई व्यक्ति प्रेम या मृत्यु में से किसी एक को चुन सकता है। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार पूछे जाने पर मसीह के अधिकार द्वारा की गई प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वे सभी जो विश्वास करते हैं, प्रेम और आज्ञाकारिता के अपने कार्यों से अपना विश्वास दिखाते हैं। मसीह अनंत जीवन है, इसलिए जो पाप में बना रहता है वह अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। देवता नाज़रेत के यीशु के मानव रूप में पृथ्वी पर आए और सभी लोगों को क्षमा और मुक्ति का अपना संदेश दिया। जो लोग उसे और उसके संदेश को आज्ञाकारिता के माध्यम से स्वीकार करते हैं, उनके पास अनंत जीवन है। दूसरा जॉन। ईश्वर के लिए एक दूसरे से प्रेम करना ही प्रेम है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना ही प्रेम है। सांसारिक चीजों के प्रति अपने प्रेम के कारण धोखेबाज बाहर चले गए हैं, अब उनके चर्च में नहीं हैं। वे इस बात से इनकार करते हैं कि यीशु ही मसीह है। जो ईसाई ईसा मसीह और उनके प्रेरितों की शिक्षाओं के अनुसार नहीं जीते, उन्होंने उन्हें त्याग दिया है। तीसरा जॉन। ईसाइयों के लिए यह सही है कि वे उन लोगों की सहायता करें जो ईसा मसीह और उनके क्षमा और मुक्ति के संदेश का प्रचार करते हैं। कुछ ऐसे ईसाई होंगे जो शक्ति और अधिकार के साथ अन्य ईसाइयों के जीवन को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए उनसे सावधान रहें, क्योंकि वे मसीह के विपरीत रह रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। अत उन्हें सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित न करें। जूड। ऐसे अधर्मी लोग हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए ईसाई संस्था के साथ इकट्ठे होते हैं। वे मसीह और उनकी शिक्षाओं के बाहर की राय पर भरोसा करते हैं, जिससे कुछ लोग भटक जाते हैं। ये कुड़कुड़ाने वाले और क्रोधी हैं, जो अपनी ही पापमय अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं। वे जोर जोर से शेखी बघारने वाले हैं, फायदा पाने के लिए पक्षपात दिखाते हैं। वहां ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अधर्मी अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे। हे सांसारिक लोग जो आत्मा से रहित हैं, वे ही फूट डालते हैं। परंतु हे प्रियो, तुम अपने आप को अपने परम पवित्र विश्वास में दृढ़ करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करो जो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। ये अधर्मी लोग और उपहास करने वाले पहले उसके शरीर में थे, लेकिन अब एक ईसाई की तरह इकट्ठे होकर अपनी सांसारिक इच्छाओं का पालन करते हैं।